अध्ययन लेख 25। इस लेख का अध्ययन 17 से 23 अगस्त के दौरान किया जाएगा। विषय, मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढकर लाऊंगा। ये लेख यहेजकेल 34 के 11 पर आधारित है, जहां लिखा है, मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढकर लाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। गीत 105, परमेश्वर प्यार है। लेख की एक झलक। कुछ मसीही सालों से यहोवा की सेवा कर रहे थे, मगर फिर वो मंडली से दूर चले गए। वो क्यों? उनके बारे में परमेश्वर कैसा महसूस करता है? इस लेख में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि पुराने जमाने में यहोवा ने कैसे उन लोगों की मदद की जो कुछ वक्त के लिए उससे दूर चले गए थे। पैराग्राफ एक। सवाल, यहोवा ने अपनी तुलना एक माँ से क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? ये सवाल हजारों साल पहले यहोवा ने भविष्यवक्ता यशायाह के दिनों में अपने लोगों से किया था। फिर उसने कहा, अगर वो भूल भी जाए तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह 49:15। हालांकि बाइबल में ऐसे बहुत कम किस्से हैं जहां यहोवा ने अपनी तुलना एक माँ से की, लेकिन यहां उसने ऐसा किया। लेकिन जिस तरह माँ अपने बच्चे से लगाव रखती है, उसी तरह यहोवा भी अपने सेवकों से बहुत लगाव रखता है। एक माँ की ममता के बारे में हासमी नाम की बहन ने कहा, जब माँ अपने नन्हे मुन्ने को दूध पिलाती है तो उन दोनों को एक दूसरे से गहरा लगाव होने लगता है, ऐसा लगाव जो जिंदगी भर बना रहता है। हासमीन की इस बात से ज्यादातर माएं सहमत होंगी। पैराग्राफ दो। सवाल, जब यहोवा का कोई सेवक उससे दूर चला जाता है तो उसे कैसा लगता है? अगर एक भी मसीही सभाओं में जाना और प्रचार करना छोड़ दे तो यहोवा को अपने उस बच्चे की फिक्र होने लगती है। तो सोचिए, जब हर साल उसके हजारों सेवक निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसे कितना दुख होता होगा। फुटनोट, इसका क्या मतलब है? एक निष्क्रिय प्रचारक ऐसा मसीही है जिसने 6 महीने या उससे ज्यादा समय से प्रचार काम और चेला बनाने के काम में हिस्सा नहीं लिया है और ना ही इसकी रिपोर्ट डाली है, लेकिन वो अब भी हमारे भाई बहन हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ तीन। सवाल, यहोवा किस बात के लिए बेताब है? इनमें से कई प्यारे भाई बहन मंडली में लौट आए हैं और उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जो अब तक नहीं आए हैं उन्हें भी यहोवा मंडली में दोबारा देखने के लिए बेताब है। हम भी यही चाहते हैं। यहोवा के पास लौट आने में हम इन भाई बहनों की कैसे मदद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए गौर करें कि कुछ लोग सभाओं और प्रचार में जाना क्यों बंद कर देते हैं। कुछ लोग यहोवा की सेवा करना क्यों छोड़ देते हैं? पैराग्राफ चार। सवाल, कुछ भाई बहनों पर नौकरी का क्या असर होता है? कुछ भाई बहन अपने काम में पूरी तरह डूब जाती हैं। भाई हंग पर ध्यान दीजिए, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के एक देश में रहते हैं। भाई का कहना है, मैं अपना सारा समय और अपनी सारी ताकत नौकरी में लगा देता था। मुझे लगा कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं यहोवा की सेवा और अच्छी तरह कर पाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा घंटे काम करने लगा। धीरे धीरे मैंने सभाओं में जाना कम कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सभाओं में जाना पूरी तरह बंद कर दिया। सच में ये दुनिया हमारा ध्यान भटका सकती है और हमें यहोवा से दूर ले जा सकती है। पैराग्राफ पांच। सवाल, जब एक बहन की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं तो उस पर क्या असर हुआ? कुछ भाई बहनों की जिंदगी में एक के बाद एक कई परेशानियां आती हैं जिस वजह से वो बहुत निराश हो जाते हैं। ब्रिटेन में रहने वाली एन नाम की बहन के साथ ऐसा ही हुआ। बहन के 5 बच्चे हैं। वो कहती है, मेरा छोटा बेटा अपाहिज पैदा हुआ। कुछ समय बाद मेरी एक बेटी का बहिष्कार हो गया। फिर मेरे बड़े बेटे को एक मानसिक बीमारी हो गई। मैं इतनी निराश हो गई कि मैंने सभाओं में जाना और प्रचार करना छोड़ दिया। मैं यहोवा से दूर चली गई। बहन एन और उसके परिवार की तरह बहुत से भाई बहन हर दिन मुश्किलों का सामना करते हैं। इन भाई बहनों के बारे में सोचकर हमें बहुत दुख होता है। पैराग्राफ 6। सवाल, अगर हम कुलुसियों 3:13 में दी सलाह ना माने तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कुलुसियों 3:13 में लिखा है, अगर किसी के पास दूसरे के खिलाफ शिकायत की कोई वजह है तो भी एक दूसरे की सहते रहो और एक दूसरे को दिल खोलकर माफ करते रहो। जैसे यहोवा ने तुम्हें दिल खोलकर माफ किया है, तुम भी वैसा ही करो। कुछ मसीहों को किसी भाई या बहन ने ठेस पहुंचाई, इसलिए वो यहोवा से दूर चले गए। प्रेषित पौलुस ने कहा कि कई बार शायद हमारे पास किसी भाई या बहन के खिलाफ शिकायत की कोई वजह हो सकता है हमारे साथ नाइंसाफी हुई हो। इस वजह से शायद हम कड़वाहट से भर जाएं और धीरे धीरे यहोवा के लोगों से मेलजोल रखना बंद कर दें। दक्षिण अमरीका में रहने वाले भाई पाब्लो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने उस पर गलत काम करने का झूठा इल्जाम लगाया, जिस वजह से मंडली में उसकी जिम्मेदारी ले ली गई। जब ऐसा हुआ तो भाई को कैसा लगा? वो बताता है, मुझे बहुत गुस्सा आया और धीरे धीरे मैं मंडली से दूर चला गया। पैराग्राफ 7। सवाल, अगर कोई दोषी महसूस करता है तो इसका क्या नतीजा हो सकता है? हो सकता है किसी भाई या बहन ने बीते समय में कोई बड़ा पाप किया हो और अब भी उसे बहुत बुरा लग रहा हो। शायद उसे लगे कि वो यहोवा के प्यार के लायक नहीं है। हो सकता है कि उसने पश्चाताप किया हो और उसे माफ भी कर दिया गया हो, फिर भी उसे लगता हो कि वो यहोवा की सेवा करने के लायक नहीं है। फ्रांसिस्को नाम के भाई को भी ऐसा ही लगता था। उसका कहना है, अनैतिक काम करने की वजह से मुझे सुधारा गया था। हालांकि मैं सभाओं में जाता रहा, पर आगे चलकर मैं बहुत मायूस हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं यहोवा के लोगों के बीच रहने के लायक नहीं हूं। मेरा जमीर मुझे कचोटता था। मुझे लगता था कि यहोवा ने मुझे माफ नहीं किया है। कुछ समय बाद मैंने सभाओं और प्रचार में जाना बंद कर दिया। ऐसे भाई बहनों के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनका दर्द समझ सकते हैं? सबसे बढ़कर यहोवा उनके बारे में कैसा महसूस करता है? यहोवा अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है। पैराग्राफ 8। सवाल, क्या यहोवा उन लोगों को भूल गया है जो एक समय पर उसकी सेवा करते थे? समझाइए। यहोवा उन लोगों को नहीं भूला है जो एक वक्त पर उसकी सेवा करते थे, मगर अब उससे दूर चले गए हैं। यहोवा ये भी नहीं भूला है कि उन्होंने उसकी सेवा में कितनी मेहनत की थी। भविष्यवक्ता यशाया ने एक खूबसूरत मिसाल देकर समझाया कि यहोवा को अपने लोगों की कितनी परवाह है। उसने लिखा, वो चरवाहे की तरह अपने झुंड की देखभाल करेगा, अपने हाथों से मेमनों को इकट्ठा करेगा, उन्हें अपनी गोद में उठाएगा। यशाया 40:11। जब महान चरवाहे यहोवा की एक भीड़ झुंड से अलग हो जाती है तो उसे कैसा लगता है? इसका जवाब हमें यीशु के उन शब्दों से मिलता है जो उसने अपने चेलों से कहे थे। तुम क्या सोचते हो? अगर किसी आदमी की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो बाकी 99 को पहाड़ों पर छोड़कर उस एक भटकी हुई भीड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? और अगर वो उसे मिल जाती है तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपनी 99 भेड़ों से ज्यादा जो भटकी नहीं थी, इस एक भीड़ के लिए खुशियां मनाएगा। मत्ती 18:12-13। पैराग्राफ 8 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक इसराइली चरवाहे को अपनी खोई हुई भीड़ की बहुत फिक्र होती थी। वो उसे ढूंढता था और उसे वापस झुंड में ले आता था। आज मंडली में हमारे चरवाहे भी ऐसा ही करते हैं। चित्र शीर्षक, एक इसराइली चरवाहे को अपनी खोई हुई भीड़ की बहुत फिक्र होती थी। पैराग्राफ 9। एक अच्छे चरवाहे को अपने भेड़ों की कितनी परवाह होती है? यहोवा की तुलना एक चरवाहे से क्यों की गई है? वो इसलिए कि पुराने जमाने में एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता था। दावेद को ही लीजिए। एक बार अपनी भेड़ों को बचाने के लिए वो एक शेर और भालू से भी लड़ा। जैसे यीशु ने मिसाल में बताया, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों पर नजर रखता है। अगर उसकी एक भी भेड़ झुंड से भटक जाती है तो उसे तुरंत पता चल जाता है। वो अपनी 99 भेड़ों को बाड़े में या फिर दूसरे चरवाहों के भरोसे छोड़कर भटकी हुई भीड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। यीशु ने मिसाल देकर हमें एक अहम सच्चाई बताई। उसने कहा, मेरा पिता जो स्वर्ग में है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। मत्ती 18:14। पैराग्राफ 9 से संबंधित तस्वीर के बारे में। प्राचीन इसराइल में एक चरवाहा अपने खोए हुए मेमने की मरहम पट्टी कर रहा है। यहोवा अपनी भीड़ को ढूंढता है। पैराग्राफ 10। सवाल, यहेजकेल 34 के 11 से 16 के मुताबिक यहोवा ने अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए क्या करने का वादा किया है? यहोवा हमें से हरेक से बहुत प्यार करता है, उन छोटी भेड़ों से भी जो उसके झुंड से भटक गई हैं। भविष्यवक्ता यहेजकेल के जरिए परमेश्वर ने वादा किया कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढेगा और दोबारा अपने साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करने में उनकी मदद करेगा। उसने बताया कि वो उन्हें बचाने के लिए वो सब करेगा जो आमतौर पर एक इसराइली चरवाहा करता था। यहेजकेल 34 के 11 से 16 में लिखा है, सारे जहान का मालिक यहोवा कहता है, देखो मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढकर लाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। जैसे एक चरवाहा उन भेड़ों को ढूंढकर लाता है जो तेतर बेतर हो गई हैं और उन्हें खिलाता पिलाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मैं उन्हें उन सभी जगहों से बचाकर ले आऊंगा जहां वो काले घने बादलों के दिन तितर बितर हो गई थी। मैं उन्हें दूसरे देशों से निकाल लाऊंगा और उन्हें इकट्ठा करूंगा और उनके अपने देश में बसाऊंगा। मैं उन्हें इसराइल के पहाड़ों पर, नदियों के पास और बसी हुई जगहों के पास चराऊंगा। मैं हरे भरे चरागाहों में उन्हें चराऊंगा और वो इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर चरा करेंगी। वहां वो हरियाली में बैठा करेंगी और इसराइल के पहाड़ों पर बढ़िया से बढ़िया चरागाहों में चरा करेंगी। सारे जहान का मालिक यहोवा कहता है, मैं अपनी भेड़ों को खुद चराऊंगा और आराम करने की जगह ले जाऊंगा। मैं खोई हुई भीड़ को ढूंढूंगा, भटकी हुई को वापस लाऊंगा, जो घायल है उसकी मरहम पट्टी करूंगा और जो कमजोर है उसे मजबूत करूंगा, मगर जो मोटी ताजी और तगड़ी है उसे मिटा डालूंगा। मैं उसका न्याय करके उसे सजा दूंगा। सबसे पहले चरवाहा अपनी भीड़ को ढूंढता था। इसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। जब उसे भीड़ मिल जाती थी तो वो उसे वापस झुंड में ले आता था। अगर उसकी भीड़ घायल होती या उसे भूख लगी होती तो वो प्यार से उस कमजोर भीड़ की देखभाल करता और उसकी मरहम पट्टी करता। वो उसे अपनी गोद में ले लेता और उसे खिलाता। परमेश्वर के झुंड के चरवाहों यानी प्राचीनों को भी उन भाई बहनों की कुछ इसी तरह मदद करनी है जो मंडली से दूर चले गए हैं। प्राचीन उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें वापस झुंड में यानी मंडली में लेकर आते हैं और यहोवा के दोस्त बनने में प्यार से उनकी मदद करते हैं। फुटनोट, अगले लेख में इस बारे में चर्चा की जाएगी कि प्राचीन ये तीन कदम कैसे उठा सकते हैं। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 11। सवाल, एक अच्छा चरवाहा कौन सी बात जानता था? एक अच्छा चरवाहा ये बात समझता था कि उसकी भेड़ें खो सकती हैं। यही वजह थी कि अगर कोई भेड़ झुंड से भटक जाती तो वो उसके साथ बुरा सलूक नहीं करता था। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने अपने कुछ सेवकों की कैसे मदद की जो कुछ वक्त के लिए भटक गए थे। पैराग्राफ 12। सवाल, यहोवा ने योना से किस तरह व्यवहार किया? यहोवा ने भविष्यवक्ता योना को नीनवे जाने के लिए कहा था, मगर योना ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, लेकिन इस वजह से यहोवा ने उसे ठुकरा नहीं दिया। यहोवा एक अच्छा चरवाहा है, इसलिए उसने योना को मौत के मुंह से बचाया और उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिम्मत दी। बाद में यहोवा ने घिये की बेल से योना को समझाया कि उसके लिए हर इंसान की जान बहुत कीमती है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? प्राचीनों को निष्क्रिय मसीहों के साथ सब्र से पेश आना चाहिए। उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहोवा की एक भीड़ किस वजह से झुंड से दूर चली गई। जब वो भीड़ यहोवा के पास लौट आए तो प्राचीनों को उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। पैराग्राफ 13। सवाल: भजन 73 की रचयिता के साथ यहोवा जिस तरह पेश आया उससे हम क्या सीख सकते हैं? जब भजन 73 की रचयिता ने देखा कि दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं और उन्हें हमेशा सब कुछ आराम से मिल जाता है तो वो बहुत निराश हो गया। वो सोचने लगा कि परमेश्वर की सेवा करने का कोई फायदा नहीं। इस पर यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने उसे धिक्कारा नहीं, इसके बजाय उसने बाइबल में उसकी सोच दर्ज करवाई। आगे चलकर उसे एहसास हो गया कि यहोवा के साथ एक अच्छे रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं। इससे हम क्या सीखते हैं? अगर किसी भाई या बहन को लगता है कि यहोवा की सेवा करने का कोई फायदा नहीं, तो प्राचीनों को झट से उसके बारे में गलत राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस भाई या बहन ने क्यों फला बात कही या फला तरीके से व्यवहार किया। जब प्राचीन इस बात को समझ जाएंगे तो वो उसे बाइबल से ऐसी आयतें दिखा पाएंगे जिससे उसका हौसला बढ़ेगा। पैराग्राफ 14। सवाल क: एलिया को मदद की जरूरत क्यों थी? सवाल ख: यहोवा ने किस तरह उसकी मदद की? अब जरा भविष्यवक्ता एलिया पर ध्यान दीजिए। एक बार वो रानी इजेबेल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे लगा कि उसके अलावा यहोवा का कोई भविष्यवक्ता नहीं है और उसने जो भी किया वो बेकार था। वो इतना निराश हो गया कि वो मर जाना चाहता था। यहोवा ने एलिया को फटकारने के बजाय उसे ये यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं है और वो उसकी मदद करेगा। उसने ये भी कहा कि अब भी बहुत काम बाकी है जो उसे करना है। जब एलिया ने यहोवा को अपनी चिंताएं बताई तो यहोवा ने ध्यान से उसकी सुनी। फिर यहोवा ने उसे नया काम सौंपा। इससे हम क्या सीखते हैं? हम सभी को, खासकर प्राचीनों को, यहोवा की भेड़ों से प्यार से व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है एक मसीही के मन में कड़वाहट हो या फिर उसे लगता हो कि वो यहोवा से माफी पाने के लायक नहीं है, लेकिन जब वो प्राचीनों को अपने दिल की बात बताता है तो उन्हें ध्यान से उसकी सुननी चाहिए। फिर उसे यकीन दिलाना चाहिए कि वो यहोवा के लिए अब भी अनमोल है। खोई हुई भेड़ों के बारे में हमें कैसा महसूस करना चाहिए? पैराग्राफ 15। सवाल: यूहन्ना 6:39 के मुताबिक यीशु अपने पिता की भेड़ों के बारे में कैसा महसूस करता था? हमें यहोवा की खोई हुई भेड़ों के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए, ये जानने के लिए हम यीशु की मिसाल पर गौर कर सकते हैं। वो जानता था कि यहोवा की हर एक भेड़ उसके लिए अनमोल है, इसलिए उसने इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने में बहुत मेहनत की और यहोवा के पास लौटने में उनकी मदद की। मत्ती 15:24। एक अच्छे चरवाहे की तरह यीशु ने भी इस बात का बहुत ध्यान रखा कि यहोवा की एक भी भेड़ ना खोए। यूहन्ना 6:39 में लिखा है, मुझे भेजने वाले की यही मर्जी है कि उसने जितनों को मुझे दिया है उनमें से मैं एक को भी ना खोऊं, बल्कि आखिरी दिन उन्हें जिंदा करूं। पैराग्राफ 16 और 17। सवाल: प्राचीनों को उन मसीहों के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए जो यहोवा से दूर चले गए हैं? प्रेषित पौलुस ने इफिसुस की मंडली के प्राचीनों से कहा कि उन्हें भी यीशु की तरह यहोवा की भेड़ों की मदद करनी चाहिए। उसने कहा, उन लोगों की मदद करो जो कमजोर हैं, और प्रभु यीशु के ये शब्द हमेशा याद रखो जो उसने खुद कहे थे, लेने से ज्यादा खुशी देने में है। प्रेषितों 20:17-35। इससे पता चलता है कि यहोवा के लोगों की देखभाल करने की खास जिम्मेदारी प्राचीनों की है। स्पेन में रहने वाले एक प्राचीन साल्वाडोर का कहना है, जब मैं सोचता हूं कि यहोवा अपनी खोई हुई भेड़ों की कितनी परवाह करता है तो मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं। यहोवा चाहता है कि मैं उसकी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करूं। इस लेख में हमने उन भाई बहनों के बारे में चर्चा की जो यहोवा से दूर चले गए थे, लेकिन जब उनकी मदद की गई तो वो यहोवा के पास लौट आए। आज भी ऐसे कई भाई बहन हैं जो वापस यहोवा के पास आने के लिए तरस रहे हैं। हम यहोवा की इन भेड़ों की कैसे मदद कर सकते हैं? अगले लेख में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पैराग्राफ 16 और 17 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक निष्क्रिय बहन बस के चलने का इंतजार कर रही है। वो देखती है कि दो साक्षी खुशी खुशी सरयाम गवाही दे रहे हैं। कुछ और जानकारी। एक खोई हुई भेड़ को कैसा लगता है? आज ऐसे कई मसीही हैं जिन्होंने यहोवा के लोगों से मिलजुल रखना छोड़ दिया है। वो किस तरह की भावनाओं से जूझ रहे हैं? आइए कुछ ऐसे भाई बहनों से सुने जो एक वक्त पर यहोवा से दूर चले गए थे। कैमरून में रहने वाली बहन फ्लोरा का कहना है, मुझे अंदर से खालीपन सा लगता था। मैं खुश नहीं थी और मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। मेरा जमीर मुझे कचोटता रहता था। मैं मन की शांति पाना चाहती थी और पहले की तरह भाई बहनों के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन सबसे बढ़कर मैं यहोवा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी। गौर कीजिए कि स्पेन में रहने वाले एक भाई ने उस वक्त क्या कहा जब वो निष्क्रिय था। मैं दोबारा यहोवा की सेवा करना चाहता हूं, पर यह आसान नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं ऐसा करना भी चाहता हूं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अपने तौर तरीके बदलने होंगे और दुनियावी दोस्तों से नाता तोड़ना होगा। मैं जानता हूं कि यहोवा के साथ मेरा रिश्ता कमजोर हो गया है, लेकिन जब मैं काम से घर लौटता हूं तो इतना थक जाता हूं कि सभाओं में जाने की ताकत ही नहीं बचती। पर मैं अब भी यहोवा से बहुत प्यार करता हूं। मैं अपनी पत्नी और दो बच्चों की भी मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहोवा के पास लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। वापस लेख पर। आपका जवाब क्या होगा? कुछ भाई बहन प्रचार करना और सभाओ में जाना क्यों छोड़ देते हैं? यहोवा अपनी खोई हुई भेड़ों के बारे में कैसा महसूस करता है? हमें निष्क्रिय मसीहों की फिक्र क्यों करनी चाहिए? गीत 139। खुद को नई दुनिया में देखें। लेख समाप्त।